Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Sri Sri Krishna Balaram Mandir Iskan Bunake. मैं आप सबका प्रातः भागवत क्लास में स्वागत है। दो तारीख को बलराम पूर्णिमा का उत्सव मनाया, कल तीन तारीख को श्रील प्रभुपाद भारत से गुरुदेव अपने भक्ति सिद्धांत श्री गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की आज्ञा के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु की अलौकिक भविष्यवाणी के विश्व के हरेक शहर और गांव में श्री कृष्ण हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन होगा और लोग गौर निताय की कृपा से मर्सी से सौभाग्यशाली बनेंगे। इसको सत्य करने के लिए हिस्टोरिक डे ऐतिहासिक दिन कल का था 3 अगस्त का, और कल प्रभुपाद जी की यात्रा के विषय में चर्चा की। अब 10 अगस्त को जन्माष्टमी आने वाली है, तो आज 5 दिन भगवान श्री कृष्ण कि दिव्य जन्म के विषय में, जैसे भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्स प्रभुपाद के अनुस्वार है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम हेति सो अर्जुन। ये 4th अध्याय का 9वां श्लोक 9th वर्स ऑफ द 4th चैप्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्स। अगर हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म को अलौकिक या दिव्य, अलौकिक मीन्स इस लोक से अलग और दिव्य का मतलब ट्रांसेंडेंटल। सामान्य व्यक्ति संसार में कर्मों के बंधन में बंध कर जन्म लेता है। भगवान जब इस दुनिया में आते हैं तो अपनी स्वेच्छा से आते हैं। अगर भगवान अवतार न लें तो हमें पता कैसे लगेगा कि भगवान है। भगवान अगर प्रकट होकर अपने आप नहीं बताएं कि मैं भगवान हूं तो हम कैसे जान सकते हैं कि भगवान कौन है। तो भगवान के सत्य को जानने के लिए भगवान का अवतार होना अति आवश्यक है। लेकिन भगवान का अवतार वहां होता है जहां भगवान के भक्त उनके दर्शन की इच्छा रखते हैं, उनकी सेवा और उनसे प्रेम करने का भाव रखते हैं, और उनसे बिछड़कर उनके दर्शन से वंचित होकर बड़े आतुर भाव से बहुत ईगरली वो भगवान को जब प्रार्थना करते हैं तब भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान को कौन प्रार्थना करते हैं? प्रायः एक तो मानव समाज में भगवान को प्रार्थना करते हैं साधु संत ऋषि मुनि, और दूसरा जब देवताओं के ऊपर संकट आता है तो देवता लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं। तो भगवान ने अपने अवतार के 2 हेतु विशेष रूप से लिखे हैं। इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे, जब इंद्र जैसे देवता के लोक में असुरी प्रभाव के लोगों का हस्तक्षेप होता है अथवा यूनिवर्सल मैनेजमेंट में डिस्टर्बेंस जब होता है डिमोनिक फोर्सेस के द्वारा, तो उस वक्त इंद्र आदि लोग ब्रह्मा जी के साथ भगवान को प्रार्थना करते हैं तो भगवान देवताओं के हित के लिए प्रकट होते हैं, जैसे वामन देव के रूप में प्रकट हुए इंद्र की सहायता करने के लिए। इंद्र को वापस इंद्रासन दिलाया और बलि महाराज को सूतल लोक दिया, और बलि महाराज अब जो आएगा मनवंतर नेक्स्ट आठवां, उसमें इंद्र बनेगा। बलि महाराज को भगवान ने उसकी तपस्या के फल स्वरूप ये वरदान दिया है कि आने वाले मनवंतर में बलि महाराज इंद्र बनेंगे। इससे ये सिद्ध होता है कि इंद्र आदि देवता जो है वो पोस्टों के नाम है, वो कुर्सी का नाम है, वो उस पोस्ट का नाम है जिसके ऊपर योग्य पुरुष समय समय के ऊपर उस पोस्ट को ऑक्यूपाय करते हैं और भगवान की आज्ञा से वहां सेवा करते हैं। और दूसरा, साधु संत महात्मा ऋषि लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो ऋषि संसार के लोगों की प्रतिनिधि तो कौन करता है भगवान के अवतार के लिए? पृथ्वी माता। पृथ्वी संसार में हम सबकी माँ है, वैसे आठ मदर्स जो हमारी बताई गई हैं, उसमें एक माता पृथ्वी माता है। तो माता पृथ्वी जब अपने ऊपर असुरी प्रवृत्ति के लोगों के प्रभाव को ज्यादा बढ़ता हुआ देखती है, वैसे असुर सदा रहते हैं, भगवद गीता में ये 16वें अध्याय में श्लोक है, दिवाओ सर्गो लोके अस्मिन देव असुर एवच। इस सृष्टि में हमेशा देवता और असुर की दो सृष्टियां होती हैं। कृष्ण के अवतार के समय भी कंस था, जरासंध था, राम जी के अवतार के समय भी रावण था, कुंभकर्ण था, और भगवान नरसिंह देव आए तब भी हिरण्यकशिपु आदि के रूप में असुर थे। तो असुरों का भी सृष्टि होती है। जब असुरों की सृष्टि का प्रभाव बढ़ने लगता है और देवी प्रकृति के स्वभाव के लोगों में कमी आने लगती है तो बैलेंस बिगड़ जाता है। तब भगवान, जैसे भगवद गीता में कहते हैं, जदा यदा ही धर्मस्य ग्लानी भवती भारत। तो धर्म का मतलब है भगवान का नेम, धर्मार्थ साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वो है जो भगवान ने दिया है। धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेकर आते हैं। तो जब धर्म के पालन करने वाले लोग कम हो जाते हैं, धर्म की ग्लानी का मतलब क्या है? धर्म की ग्लानी का अर्थ है कि धर्म के ऊपर चलने वाले लोग कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं धर्म के ऊपर चलने वाले लोग? क्योंकि अधर्म के ऊपर चलने वाले लोग इतने बढ़ जाते हैं कि धार्मिक लोगों को धार्मिक कार्य ही नहीं करने देते। धार्मिक लोग कोई धार्मिक कार्य करना चाहें तो असुर प्रवृत्ति के लोग उनके धर्म के पूजा पाठ में, गौ रक्षा में, यज्ञ आदि में, मंदिर की स्थापना में, साधु संत के सत्संग में बाधा डालते हैं। ये ऐसे नहीं है कि पहले जमाने में ऐसे होता था। आज भी कई दुनिया के देशों में भगवान के नाम के प्रचार के ऊपर प्रतिबंध है, सेंसरशिप है, पुस्तक भी नहीं छाप सकते, कीर्तन भी नहीं कर सकते। ऐसी दुनिया में अभी भी असुरी प्रवृत्तियों के लोग हैं। तो जब इनका बैलेंस बिगड़ जाता है, असुर प्रवृत्ति के लोगों का संख्या बढ़ जाता है, तो भगवान कहते हैं धर्म संस्थापन अर्थाय। इसका मतलब धर्म के ऊपर चलने वाले लोगों की सहायता करने के लिए, धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए। पुनः स्थापित का मतलब क्या है? जैसे भगवान राम जी के जन्म के नक्षत्र का नाम है पुनर्वसु। पुनर्वसु का मतलब है जो चीज पहले थी फिर गुम हो गई, छुप गई, लास्ट हो गई, उसको वापस लाके अपनी जगह पे स्थापित करें। तो भगवान राम के अवतार से जो धर्म लुप्त हो गया था भगवान ने उस मर्यादा के राज कैसे किया जाए उस क्षत्रिय धर्म को और मर्यादा के धर्म को स्थापित किया। तो ऐसे हम पढ़ते आ रहे हैं पहले भी दो चार दिन से, पृथ्वी मां अपने ऊपर बहुत से असुरी प्रवृत्ति के राजाओं के अन्याय के भार को सह न सकी और ब्रह्मा जी को प्रार्थना करने गई। ब्रह्मा पृथ्वी का पुत्र माना जाना चाहिए क्योंकि ब्रह्मा भगवान विष्णु का पुत्र है और पृथ्वी भगवान विष्णु की पत्नी है। पृथ्वी भूदेवी के रूप में भगवान विष्णु की पत्नी है और इस भगवान ने उस पृथ्वी को सब अपने बालकों का, हम सब भगवान के, श्री कृष्ण भगवान भगवत गीता में कहते हैं पिता अहम अस्य जगतो, मैं पिता का मैं जगत के सब जीवों का पिता हूँ और इस माता को सबको पालन पोषण करने का, इनको धारण करने का, इनको सहन करने का। माता कितना सहती है अपने बच्चों का, कितना बच्चों का सहनशीलता माता में होती है, सहती है। तो पृथ्वी की विशेष पृथ्वी का गुण है सहनशीलता, लेकिन वो भी जब अति अत्याचार हो जाता है तो दुखी होके ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि ब्रह्मा जी इस यूनिवर्स का एडमिनिस्ट्रेटर है, ये पूरे ब्रह्मांड का अधिपति ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी को जाके कहा कि असुरी शक्तियों के राजाओं का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि अब धर्म का पालन साधु लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, कठिन हो गया है, तो आप कृपा करके कुछ प्रबंध कीजिए, कुछ इसका निवारण कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जगत के पालन का भार भगवान विष्णु के ऊपर है, मैं तो सृष्टि करता हूं, सृष्टि करना मेरा धर्म है लेकिन पालन करना भगवान विष्णु का धर्म है। और भगवान को पालन तो करना है लेकिन असुरों का संहार भी करना पड़ेगा धर्म के स्थापित करने के लिए। तो भगवान भोलेनाथ शंकर जी प्रलय का कार्य करते हैं, इसलिए पृथ्वी हम शंकर जी को भी साथ ले चलेंगे। भगवान कहेंगे कि असुरों को नाश करना है तो शंकर जी कर लेंगे, तो उधर फिर शंकर जी को बुलाने जाना पड़े, उसको भी साथ ले चलते हैं। शंकर जी को साथ लिया, इंद्र आदि देवताओं को साथ लिया, नारद आदि ऋषियों को साथ लिया और ब्रह्मा जी ने भगवान क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान श्वेत द्वीप में प्रार्थना किया, पृथ्वी के भार के विषय में भगवान को प्रार्थना किया। भगवान ने दर्शन नहीं दिया, केवल ब्रह्मा के हृदय में भगवान ने संदेश दिया। इसको ऐसे कहा जाए कि किसी आदमी से हम मिलने जाएं, बोला मिलने का टाइम नहीं है, फोन के ऊपर बात कर लो। तो एक होता है मिलना डायरेक्ट, एक होता है फोन पे बात करना। तो जो हृदय का टेलीफोन था, जैसे प्रभुपाद जी ने कुरुक्षेत्र में कहा कि संजय कुरुक्षेत्र वाल में होने वाली लड़ाई को धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर के महल में बता रहा था। कैसे बता रहा था? बोला संजय के हृदय में व्यास देव ने दूरदर्शन टेलीविजन स्थापित किया था। तो ये हृदय का दूरदर्शन जो है वो बिजली से नहीं चलता है, एंटीना से नहीं चलता है, ये मंत्रों से स्थापित होता है। तो संजय के हृदय में व्यास देव ने टेलीविजन स्थापित कर दिया था मंत्रों के द्वारा, और कुरुक्षेत्र में और अन्य स्थानों पे जो भी हो सकता था उसको वो देख सकता था। ऐसे ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान से बात करने के लिए मानो दूरभाष्य, एक दूरदर्शन भी है तो दूरभाष्य भी है। तो भगवान ने पहला तो ये कहा कि ब्रह्मा जी पृथ्वी के ऊपर जो संकट है उससे मैं अवगत हूं, मैं उसको जानता हूं, मुझे उसका पता है। इससे एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि इस दुनिया में जो कुछ होता है वो भगवान को पता है। भगवान इस धरती के कण कण में समाये हुए हैं, वो सर्वव्यापक हैं, वो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, सब जगह प्रकट हैं, कण कण में रहते हैं, हमारे सबके हृदय में रहते हैं। हम क्या करते हैं वो सब जानते हैं, हम कितना गलत काम करते हैं ये भी भगवान जानते हैं, हम कितना धोखा लोगों को देते हैं ये भी जानते हैं, हम कितना पॉलिटिक्स करते हैं ये भी भगवान जानते हैं, लेकिन बोलते क्यों नहीं है? भगवान ने नियम बना रखा है, जब कोई मुझे प्रार्थना करेगा तो मैं उसकी सहायता करूंगा, नहीं तो भगवान किसी एक की सहायता करे दूसरे की नहीं करे तो पक्षपात हो जाएगा ना, कि एक का साइड लेता है एक का साइड नहीं लेता है। इसलिए जैसे कल्प वृक्ष ने ये नियम बना रखा है कि मेरे नीचे आके जो प्रार्थना करेगा उसकी इच्छा पूरी करूंगा। सूर्य ने नियम बना रखा है कि जो बाहर आएगा सर्दी में उसको मैं गर्मी दूंगा, उसकी सर्दी को भगा दूंगा। लेकिन अगर आदमी कहे कि मैं धरती के नीचे रहूंगा फिर सूर्य मेरे को गर्मी दे कैसे देगा? ऐसे आग ने नियम बना रखा है जो मेरे पास आके बैठेगा उसको मैं ताप दूंगा, उसका मैं सर्दी को भगा दूंगा। तो ऐसे भगवान ने नियम बना रखा है कि जब कोई प्रार्थना करेगा याचना करेगा, राम जी ने विभीषण को आकाश में खड़े होकर शरण की बात कहते हुए सुना, तब श्री राम जी ने एक विशेष श्लोक कहा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने उसको कोट किया, इसमें पढ़ा है, सकृत याचति। एक बार अगर कोई याचना करे, याचना करे का मतलब याचक भिखारी को कहते हैं जनरली, याचक का मतलब है मांगने वाला, याचक कहते हैं जो मांगे। भगवान कहता है जो एक बार मांगता है मुझसे, क्या मांगता है? कि मैं तुम्हारा हूं ऐसे कह दे, मैं तुम्हारा हूं, अहम त्वाम, मैं तुम्हारा हूं ऐसे कोई एक बार कह दे तो भगवान कहते हैं सबसे मैं उसकी रक्षा करता हूं, इदम मे व्रतम, तो उसकी मैं सर्व प्रकार से रक्षा करता हूं, ये मेरा व्रत है, ये मैंने वो लिया हुआ है। कोई एक बार मेरे शरण में आए प्रार्थना करे याचना करे तो मैं उसके सारी समस्याओं का समाधान करके उसकी रक्षा करता हूं, ये मेरा व्रत है। तो भगवान का व्रत क्या है? भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परिच माम एकम शरणम व्रज, जब मेरे शरण में आएंगे तो फिर मैं उनकी रक्षा करूंगा। तो यहां एक बात समझनी चाहिए कि धरती के जैसे बाप को भी पता होता है कि बेटा क्या बदमाशी करता है, लेकिन वो तब कहता है जब बहुत जरूरत पड़ती है, नहीं तो सामान्य छोटी छोटी बातों के ऊपर रोज रोज तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो भगवान ने कहा ब्रह्मा जी को कि पृथ्वी के सारे संकट से मैं अवगत हूं, अब आप प्रार्थना करने आए हो तो मैं आ जाऊंगा। रात ही हम दो जगह सत्संग में ये बात कर रहे थे कि भगवान केवल भारत में ही क्यों अवतार लेते हैं, सब जगह क्यों नहीं लेते, तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर ये है कि और जगह कोई उनको बुलाता नहीं है, जब कोई बुलाएगा तब आएगा ना। भगवान तो सबके लिए है लेकिन जो बुलाएगा उसके पास आएंगे ना। धरती के अंदर पानी तो सब जगह पे है, धरती के नीचे तो पानी है ही, लेकिन कोई बोरिंग करेगा कुआं खोदेगा तो फिर पानी मिलेगा ना, अपने आप तो नहीं आएगा, तो कोई प्रयास करेगा तब भगवान आएगा, नहीं तो भगवान क्यों आएंगे। तो अब आज ब्रह्मा जी पृथ्वी के बिहाफ पे और पृथ्वी अपने प्रजा के बिहाफ पे प्रार्थना जब करने लगी, भगवान ने कहा मैं पृथ्वी के दुख से अवगत हूं, उसको जानता हूं, अब आप निश्चित हो जाइए। मैं क्योंकि ये ब्रह्मा जी आप आए हैं, ये 28वीं चतुर्युगी चल रही है आपकी, ब्रह्मा जी के एक दिन में 71 72 चार बार युग चेंज होते हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, ये एक साइकिल, ऐसे 70+ टाइम जब साइकिल पूरी होती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। और इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात है जब प्रलय होती है, उसको छोटी प्रलय कहते हैं। तो अब ब्रह्मा जी की मानो के 28वीं चतुर्युगी 28, तो इसका मतलब अभी 11 बजे है ब्रह्मा जी के, जब 35वीं चतुर्युगी आएगी तब दोपहर के 12 बजेंगे। तो ब्रह्मा जी का अभी बोंजू का टाइम है, गुड मॉर्निंग का टाइम, अभी तक 12 नहीं बजे हैं। तो 28वीं चतुर्युगी के कलयुग का एंड था, द्वापुर का एंड था, द्वापुर एंड होने वाला था। तो ये समय भगवान श्री स्वयं श्री कृष्ण के प्रकट होने का टाइम है। वैसे किसी भी समय भगवान अवतार ले सकते हैं, और किसी आदमी में अपनी शक्ति का प्रवेश करके शक्ति अवेश अवतार के रूप में आ सकते हैं, कभी अपने किसी बहुत ट्रस्टेड आदमी को वहां से भेजते हैं। तो ऐसे 28वीं चतुर्युगी के द्वापुर के अंत में भगवान का शेड्यूल बना हुआ है, भगवान स्वयं श्री कृष्ण वृंदावन में ब्रज लीला करने के लिए आते हैं। तो ये टाइम एग्जैक्टली मैच हो रहा था ब्रह्मा जी की 28वीं चतुर्युगी के द्वापुर के समय का। और इसी 28वीं चतुर्युगी के कलयुग के प्रथम चरण में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो ये ब्रह्मा जी के एक दिन में ही आते हैं। तो ये कोइंसाइडेंट ऐसा टाइम था, और प्रभु और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसलिए ब्रह्मा संहिता ने युगा युगे हर युग में भगवान अवतार लेता है, तो हर युग में कोई प्रार्थना करता है तभी लेता है ना, नहीं तो कैसे लेगा। माता आदिति ने प्रार्थना किया, पयोव्रत धारण किया, तो भगवान प्रकट हुए, कहा कि मेरे बच्चों की रक्षा कर। हर समय संतों ने, साधुओं ने, भगवान ने, देवताओं ने भगवान को प्रार्थना की है, तब भगवान आए हैं। तो आज तो ब्रह्म संहिता में इसलिए गर्ग संहिता में इसलिए लिखा है कि इस बार जब ब्रह्मा गए, नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ते नाम ने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारण निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात। इस बार जब ब्रह्मा गए थे तो ब्रह्मा इस बार मतलब एक कहा जाए कल्प भेद से, कल्प मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में भेद होता है, कभी लीला में स्थान अंतर होता है। तो ब्रह्मा गर्ग संहिता में लिखा है कि भौतिक जगत की जो कवरिंग है, जहां भौतिक जगत सत्य लोग समाप्त होता है, उस कवरिंग को वामन देव के राइट फुट के बिग टो ने पियर्स किया था। तो वो जो होल बना है, उस होल के अंदर ब्रह्मा जी, शंकर जी, पृथ्वी आदि ऊपर गए, और वहां से ऊपर जाके पहले उनको क्या मिला, ब्रह्म द्रव्य जल, क्योंकि जब भगवान के अंगूठे ने पियर्स किया था यूनिवर्सल कवरिंग को, तो ऊपर से जल गिरा था, तो ऊपर जल है, उसको ब्रह्म द्रव्य कहते हैं। ब्रह्म द्रव्य का मतलब भगवान पिघल गए हैं, जैसे ब्रह्म भगवान है वो द्रव्य के रूप में, मतलब जल के रूप में, उसी को गंगा कहते हैं। तो गंगा जल का दूसरा नाम है ब्रह्म द्रव्य। गंगा उसको इसलिए कहते हैं, गंगा मतलब चलती रहे, गम्यति जो चलने वाली चीज हो, खड़ी नहीं होती है, उसको कहते हैं गंगा। तो गंगा का मतलब चलने वाली, लेकिन है ब्रह्म द्रव्य। गंगा जल साधारण पानी नहीं है, ब्रह्म द्रव्य है। तो उस ब्रह्म द्रव्य में ब्रह्मा जी ने आदि देवताओं ने देखा कि बहुत सारे लोक, जैसे एक ये यूनिवर्स का गोला है, धरती का गोला जैसे बनाते हैं, ऐसे कई मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस आर फ्लोटिंग इन दैट ब्रह्म द्रव्य। अनेक ब्रह्मांड वहां फ्लोट कर रहे थे। और तब उनको ब्रजा नदी नजर आई। ब्रजा नदी बाउंड्री है, भौतिक जगत और स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बाउंड्री ब्रजा नदी है। ब्रजा नदी को क्रॉस किया तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उनको केवल इफल्जेंस दिखाई दिया। सहस्र मतलब हजारों सूर्यों के समान प्रकाश दिखाई दिया, वो ब्रह्म ज्योति भगवान से निकलने वाली। और उसको अंदर से जाते हुए उन्होंने एक बिल्कुल दूध जैसा वाइट क्वाइल में अनंत शेष को देखा। जैसे बलराम जी का रंग कैसा है, सफेद काटन जैसा, कपूर जैसा, दूध जैसा। और वो बलराम जी अनंत शेष के रूप में जो क्वाइल में थे, उसके बीच में गोलोक वृंदावन देखा। तो गोलोक वृंदावन सारा बलराम जी का एक्सपेंशन है, उसी के अंदर गोलोक वृंदावन बना हुआ है। यही बलराम जी का विशेष कार्य है कि पूरे धाम को बनाते हैं। इसलिए एक धाम पर, एक धाम का अर्थ है अंश, एक यहां लिखा है भगवान कहते हैं धाम मामकम। बलराम कौन है? धाम मामकम, मेरा धाम है। ये शब्द भागवत में यहां आया है, शेष आख्यातम धाम मामकम, उसको शेष कहते हैं जो मेरी सैया है और मेरा धाम है। और तब ब्रह्मा जी ने गोलोक में राधा और कृष्ण को सिंहासन के ऊपर विराजमान देखा। तो इस अवतार में साक्षात भगवान श्री कृष्ण, भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतार लेने वाले हैं। तो ये इसलिए गर्ग संहिता ने इसी विशेष एक कल्प के इस 28वें चतुर्युगी का मानो वर्णन किया है। और तब कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान ने कहा आप जाइए, आप देवता लोग सब अपने अंश से यदुवंश में प्रकट हुई होइए। यदु के जितने भी यदु है, अंधक है, भोज है, मधु है, इन सब वंशों में प्रकट हुई है और ब्रज में जाके। और भगवान ने एक भाषा यहां लिखी है कि श्री प्रिय कर, क्योंकि मेरे साथ श्री जी आएगी, राधिका आएगी, उसके प्रिय कर, उसके उसके आनंद देने के लिए आप अपनी पत्नियों को वहां यदुवंश में भेजिए, ब्रज में भेजिए। तो बहुत सी देवताएं, देवंगनाएं ऐसी हैं जो साधना करके भगवान का सेवा करना चाहती हैं, तो वो गोपियों के रूप में ब्रज में जाके प्रकट हों राधा रानी के आनंद के लिए। तो ये एक शब्द यहां आएगा भागवत में इस दृश्य से, श्री प्रिय कर। तो राधा रानी, उसके बाद ब्रह्मा जी आदि तो वहां से प्रणाम करके वापस लौटे। तब भगवान ने पहले बलराम को कहा आप पहले देवकी के उदर में जाके मेरे लिए आसन तैयार कीजिए, फिर आप रोहिणी के उदर में स्थापित होके यदुवंश को भय से मुक्त कीजिए। ये भगवान ने बलराम जी को आदेश दिया और बलराम जी वहां से अपने रथ के ऊपर चढ़ के, बलराम जी का अपना रथ है और बलराम जी के रथ के ऊपर ध्वजा है, उसका नाम है ताल अंक ध्वज। भगवान विष्णु का क्या नाम है? गरुड़ ध्वज। ध्वज का मतलब झंडा, जो फ्लैग है। तो भगवान विष्णु के फ्लैग के ऊपर गरुड़ का निशान है, गरुड़ है। और अर्जुन के फ्लैग के ऊपर हनुमान जी है, तो अर्जुन का नाम है कपि ध्वज। तो बलराम जी का नाम है ताल अंक ध्वज, जिसके ध्वजा के ऊपर ताल वृक्ष का अंक है। अर्जुन के सारथी कौन बने थे? भगवान श्री कृष्ण। तो अर्जुन का नाम पार्थ सारथी। भगवान श्री कृष्ण का सारथी कौन है? दारुक। इंद्र का सारथी मालती, जिसको रथ के साथ इंद्र ने भगवान राम के लिए भेजा था लंका में रावण से युद्ध करने के लिए। रावण लंका में रथ के ऊपर चढ़ाए और रावण राम जी नीचे खड़े हैं, तो इंद्र ने अपने रथ को और मालती को भेजा था। और उस वक्त रावण जी जैसे राम जी एक एक सर काटे रावण का और वापस उसमें चपक जाए, तो मालती ने कहा, भगवान आप सब जानते हैं इसके हृदय में अमृत है, इसका ब्रह्मा जी का वरदान है, जहां गर्दन काटोगे गर्दन वापस आ जाएगा, आप अपना बाण इसके हृदय में सीधा मारिए, जहां अमृत है उसको सुखा दीजिए, ये मर जाएगा। आप क्यों भूल रहे? मालती ने भगवान को ऐसे संकेत देके याद दिलाया कि आप ऐसे लीला आप छोड़िए, इसका अंत करने का समय आ गया। तो भगवान ने एक ही बाण रावण के हृदय में मारा, तब रावण नीचे गिर पड़ा। तो कहने का तात्पर्य है, तो सम्मति नाम का सारथी बलराम जी का है, सम्मति। और बलराम जी का आयुध मतलब दीपन हल है और मूसल है, हल और मूसल। और उनका एक कवच है, उसका भी स्पेशल नाम है, अभी मेरी जबान पे नहीं आ रहा है, वो स्पेशल कवच है उनका। इन तीनों को बुलाया बलराम जी ने और तीनों ऐसे आके खड़े हुए, प्रणाम किया। तब बलराम जी ने कहा, अब आप, मैं जा रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ब्रजमंडल में मैं प्रकट हूंगा, और आप लोग जब मैं आपका आवाहन करूं तब आप आना, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बुलाऊंगा। अगर रामलीला में आप देखेंगे रामायण में, तो जब विश्वामित्र जी भगवान श्री रामचंद्र को सारे दिव्य अस्त्र दे रहे हैं, तब हर एक दिव्य अस्त्र पर्सनालिटी बन के आया, अपने स्वरूप में आके भगवान को प्रणाम किया, जैसे कहा कि मैं पशुपति हूं मुझे स्वीकार कीजिए, मैं ब्रह्म अस्त्र हूं मुझे स्वीकार कीजिए। तो भगवान ने सब अस्त्रों को स्वीकार किया और कहा, आप अभी अभी अपने अपने स्थान जाओ, जब मैं आपका आवाहन करूं तब आप आ जाना, जब मैं आपका आवाहन करूं। आवाहन एक शब्द है वैदिक लिटरेचर का, उसका मतलब है जिसको बुलाया जाए उसको आना ही पड़ेगा, वो ना नहीं कर सकता। एक होता है निमंत्रण, हिंदी में निमंत्रण का मतलब इनविटेशन। इनविटेशन हमारे को कितने लोग देते हैं, सब आते थोड़ी है। अब जन्माष्टमी की इनविटेशन तो आपने लाखों लोगों को दिए, सब थोड़ी आएंगे। एक होता है आवाहन, आना ही पड़ेगा, ना नहीं कर सकते। तो देवताओं का आवाहन होता है, वो आते हैं। तो भगवान बलराम जी ने हल को कहा, मूसल को कहा, अपने कवच को कहा, सम्मति आदि को कहा कि जब मुझे आपकी जरूरत होगी मैं आपको बुलाऊंगा, तब आप आ जाना। एक जगह बलराम जी तीर्थ यात्रा में नैम शरण्या में जब गए, तो उग्र सत्वा सूत कथा कर रहा था, सनक आदि ऋषि सुन रहे थे। तो बलराम जी के आने के ऊपर ऋषि तो उठे लेकिन सूता नहीं उठा। तो बलराम जी ने एक तिनका उठाया, तिनका का मतलब क्या, जो कुश घास है, कुश घास का एक तिनका उठाया, ऐसे मारा और प्राण निकल गए। तो सब ऋषियों ने कहा, ये हमको कथा सुनाते थे, भगवान की लीला सुनाते थे, आपने इसका उद्धार कर दिया, अब हमारा कौन कथा सुनाएगा। तो बलराम जी ने कहा, वैसे व्यास आसन के ऊपर बैठे हुए को उठने का नियम नहीं है, सामान्य रूप से कोई आए तो, लेकिन भगवान आ जाए तो जिसके लिए कथा जिसकी कर रहे हैं वही आया है, तो उसके लिए नहीं उठे तो ये अपराध माना जाता है। अपने से बड़ा आए तो उसके सम्मान में उठना चाहिए, ये मर्यादा है। वैसे नेम ये भी है कि व्यासासन के ऊपर बैठने के बाद कोई बड़ा आदमी आए तो उठना जरूरी नहीं है, फिर भी भगवान अथवा भगवान के कोई बहुत विशेष पार्षद आए तो उठना चाहिए, तो ये भी मर्यादा है। हमने देखा है कभी कि व्यास आसन से कोई गुरुजन आते हैं तो उठ के उसका प्रणाम करके स्वागत करते हैं कि गुरु आ जाए अपना और व्यास आसन के ऊपर बैठा रहे तो ये अपराध माना जाएगा। जबकि ये भी नियम है कि व्यास आसन के ऊपर से किसी के लिए उठना जरूरी नहीं है। तो व्यास तो बलराम जी ने कहा आप कहते हैं तो मैं इसको जीवित कर देता हूं। तो बलराम उन्होंने कहा नहीं, आपके द्वारा इसका उद्धार हुआ है अद्भुत, एक तिनके से अब इसकी सदगति हो गई। आप एक तो आपने हत्या की है व्यास आसन के ऊपर बैठे हुए की, इसलिए आप तीर्थ यात्राएं कीजिए ताकि लोगों को लिए एक उदाहरण बने के प्रास्तुत करना चाहिए, और दूसरा इसके बेटे को आप आशीर्वाद दीजिए कि उसके अंदर सारा ज्ञान आ जाए और भक्ति की कथा हमको बताता रहे। तो उग्र सर्वा सूता जो रोमहर्षण के बेटे उग्र सर्वा को बलराम जी ने आशीर्वाद दिया कि अब ये दीर्घ काल आपको कथा सुनाता रहेगा। और जाने लगे बलराम जी तो सब ऋषियों ने कहा बलराम जी एक बलवल नाम का राक्षस है, वो इलवल का बेटा है और वो हमारे यहाँ आता है पूर्णिमा पूर्णिमा को ऐसे खास एक दिन पे और पूरे हमारे पूजा पाठ यज्ञ कर सत्यानाश कर देता है, आप उसका वध करके हमारा उद्धार कीजिए। तो बलराम जी ने कहा ठीक है, मैं ओबलाइज हूँ आप संतों की सेवा करने के लिए। उधर रुके और बलवल आकाश में आया और बहुत ऊपर आकाश में बलवल था और वहां से यज्ञ की वेदी को पूजा के स्थान को भ्रष्ट कर रहा था। तो बलराम जी ने उस वक्त अपने हल का आवाहन किया, मुसल का आवाहन किया, बलराम जी के हाथ में हल आया, बलराम जी ने हल को ऐसे लंबा किया, बलवल जो ऊपर था उसके गर्दन में ऐसे हल को लगाए, उसको खींच के नीचे लाए, जब नीचे आया तो दूसरे हाथ में मूसल से उसके सर के ऊपर मूसल मारा और उसका सर फट गया और बलवल मर गया। तो ये दोनों आयुध एक ही समय में बलराम ने बलवल को मारने के लिए मंगाए, एक से खींच के नीचे किया और दूसरे से सर के ऊपर मारा और बलवल का अंत हो गया। बलवल अंत कह बलराम जी की प्रार्थना है। फिर बलराम जी वहां से ये त्रिवेणी ये कहां बैठे थे, नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य से बलराम जी त्रिवेणी संगम गए, त्रिवेणी संगम से बनारस गए, काशी गए, काशी से फिर गया गए, गया से फिर गंगा सागर गए, ये पूरी यात्रा बलराम जी ने की। तो बलराम जी के प्रकट्य के बाद कल प्रभुपाद जी का बलराम जी की शक्ति से संचारित होकर, जैसे हमारा हमारे हमारे बहुत सारे प्रभुपाद के शिष्यों का और आचार्यों का मानना है कि प्रभुपाद जी नित्यानंद की कृपा के मूर्ति थे। जो नित्यानंद की कृपा की मूर्ति की पहचान क्या है कि जगाई मधाई जैसे लोगों के ऊपर भी दया करे, नहीं तो सामान्य लोग से साधु को छोड़ो, आप लोग इस मंदिर में कोई भक्त बनने आए तो उसको उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो, तुम ये करते हो, तुम में ये खराबी है, तुम चाय पीते हो, नहीं आ सकते हो। हम तो अभी भी इतने सारे, लेकिन जगाई मधाई तो सब बुराइयों से लिप्त थे, फिर भी उनको जाके हरिदास और नित्यानंद प्रचार करते थे। तो प्रभुपाद जी ऐसे एक अद्भुत व्यक्ति हैं इस परंपरा में, इस गौड़ीय वैष्णव परंपरा में प्रभुपाद जी एक ऐसे ही एक ही व्यक्ति ऐसे अपने आप में विलक्षण है, वेरी स्पेशल है, जिन्होंने न्यूयॉर्क अमेरिका में और फिर सैन फ्रांसिस्को में जो जगाई मधाई से भी गिरे हुए लोग थे, दो नहीं थे, अनलिमिटेड थे, कपड़े भी नहीं पहनते थे, तो जगाई के हाथ में तो केवल शराब का मटका था, इनके पास शराब के साथ वो हीरोइन भी थी और एलएसडी भी थी और लड़कियों के गले में हाथ जले हुए भी थे, उनके बीच में बैठ के कीर्तन करना, ये असल में ऐसे है देखा जाए जैसे रामानुज और जैसे रामानंद राय जगन्नाथ के आगे नृत्य करने वाले नौजवान लड़कियों का सेंटेड ऑयल से मसाज करते थे तो भी उनके अंदर कोई काम वासना नहीं आती थी। ऐसे ऐसे लोगों के बीच में बैठकर भी उनके भगवान की कृष्ण भावना का भागवत का संदेश देके कीर्तन करें कितना अद्भुत है। एक बार प्रभुपाद जी को कहा कि आप कीर्तन करने के लिए चले, यहां बहुत हिप्पी लोग होते हैं। प्रभुपाद ने एक जगह कहा है कि हिप्पीज आर अवर गुड कस्टमर्स, वो हमारे अच्छे ग्राहक हैं क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस एंड वी हैव द पैकेज ऑफ हैप्पीनेस सो दे आर अवर गुड कस्टमर्स। और भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है जब तक लोग इस दुनिया से फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा, अंटिल अनलेस वन इज कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड चीटेड बाय पीपल, लोग जब उससे धोखा करेंगे, जब फ्रस्ट्रेटेड होगा, लोगों ने उसको धक्के दिए होंगे, तब वो भगवान की तरफ आएगा, सामान्य रूप से नहीं आएगा। तो ये हिप्पीज तो वो थे जो फ्रस्ट्रेटेड थे कंप्लीटली अपनी लाइफ से। तो ये भक्ति विनोद का ठाकुर जी का लिखना है कि अंटिल अनलेस समबडी इज फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम द लाइफ ही विल नॉट बी सीरियस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस विथ फुल डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। तो प्रभुपाद जी को एक जगह कहा कि आप कीर्तन करने चले और वहां कीर्तन जहां करने गए तो एक मिट्टी का जैसे एक एक एक, एक मैं इसको सुना एक जगह के आप कहीं भी कीर्तन करें ये न देखें कि कोई यहां है कि नहीं है। जैसे भक्ति श्याम सरस्वती कहते हैं आप भगवत कथा करें आप ये नहीं देखें कि कोई सुनने वाला है कि नहीं है, दीवान है दीवार में कई जीव है, पता नहीं कोई एक सुन ले और वो भक्त बन जाए, आपको तो मालूम नहीं है, आपको अपनी कथा करनी है। हम अब लेट भी होता है, हम आए यहां तो एक ही नरसिंह प्रभु बैठे थे, बोला आज कोई नहीं है, हमने बोला कोई बात नहीं अपन कथा करते, जिसको आना होगा तो आएगा, तो अब जो वेतन लोग अपने आप आ गए। तो हमारा काम है कथा करनी है, बस हमारी सेवा ये है। तो वहां एक तालाब था लेकिन वो कीचड़ का तालाब था, पानी का नहीं था, जैसे एक मड बात होती है, जैसे मड बात कीचड़ के तालाब बनाते हैं उसमें लोग बात करते हैं, और उसके अंदर क्रोकोडाइल से प्ले कर रहे थे कुछ हिप्पी लोग, मानो क्रोकोडाइल से प्ले कर रहे थे, बीच में क्रोकोडाइल था। तो वहां प्रभुपाद को कहा कीर्तन करेंगे, यहां हिप्पी होते हैं। प्रभुपाद वहां कीर्तन करने लगे, कोई भी नहीं था, वो अंदर खेल रहे थे कुछ हिप्पी लोग नंगे। प्रभुपाद जैसे कीर्तन समाप्त किया एक उनमें से निकल के बाहर आया, और कुछ भी पहना हुआ नहीं था, मिट्टी का शरीर में मिट्टी लगी हुई थी भभूत, बस कोई कपड़ा वस्त्र कुछ भी नहीं था। और किसी ने अभी हम कीर्तन आप करो ये नहीं देखो कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, पता नहीं किसको भगवान भेज देगा आपको मालूम नहीं है। वो जब आया तो प्रभुपाद ने अपना उत्तरी कपड़ा उसको दिया, उसके भाव को देखा, उसने ऐसे प्रणाम किया प्रभुपाद को, कीर्तन के बाद प्रभुपाद ने अपना कपड़ा दिया, उसने कपड़ा बांध लिया और भविष्य में वो इस्कान के एक बहुत बहुत प्रभुपाद के सेक्रेटरी और बहुत बड़े बड़े से बड़े मोस्ट इम्पॉर्टेंट सन्यासी और प्रीचर तुम्हारा कृष्ण गोस्वामी के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने अद्भुत कार्य प्रभुपाद जी के वो संकीर्तन दामोदर राधा दामोदर संकीर्तन पार्टी के द्वारा कई भक्त बनाए और कई पुस्तक वितरण किए। कहीं से कोई एक भगवान कैसे भेज देता है, ऐसे कीर्तन का ये प्रभाव था कि वो ऐसे निकल के आए थे, नौजवान थे और लेकिन कितना बड़ा बाद में काम किया। तो इसलिए ये कैसे या इसलिए प्रभुपाद जी एक ऐसे विचित्र का मतलब एक ऐसे अनप्रेसिडेंटल, ऐसे कभी कोई हुआ नहीं है जिन्होंने ऐसे लोगों को प्रचार किया हो जिसको कोई भारतीय साधु देखना भी पसंद नहीं करेगा। बात करना तो पसंद दूर की बात है, देखने से भी उनको लगेगा कि अपराध लग जाएगा। इफ आई सी देम आई विल गो टू हेल, दे थिंक लाइक दैट। तो नित्यानंद प्रभु की पूर्ण रूप से कृपा की मूर्ति थे प्रभुपाद जी। तो बलराम पूर्णिमा के दूसरे दिन उन्होंने, बलराम जी वही नित्यानंद हैं, उनकी कृपा को, भक्ति को साक्षात, भागवत के महात्म में भक्ति देवी वृंदावन में नारद को कहती है, नारद मेरे दो बेटे ज्ञान और वैराग्य तो मेरे होते हुए मैं जवान हूं, ये बूढ़े हो गए हैं। क्योंकि कोई ज्ञान और वैराग्य, न ज्ञान चाहता है न वैराग्य किसी में है। वृंदावन में थोड़े लोग भक्ति करते हैं, इसलिए यहां आके तो मैं थोड़ी सी युवती हो गई हूं। लेकिन नारद मैं आपको कहती हूं कि अगर ये लोग मेरा यहां आदर नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, मेरा ये पालन नहीं करेंगे, तो मैं यहां से समुन्द्र पार चली जाऊंगी। ये शब्द पद्म पुराण के महात्म में लिखा है। और तब प्रभुपाद जी के व्यास पूजा पे 100 साल के बाद कुछ महात्माओं को वृंदावन में बुलाए थे। तो एक तो महात्माओं ने अपना अनुभव बताया कि जैसे भागवत में भक्ति ने कहा है, वो भक्ति इस महात्मा भक्ति वेदांत के हृदय में बैठकर और समुद्र पार चली गई। तो नित्यानंद की कृपा और भक्ति साक्षात को हृदय में धारण करके प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में गए। और फिर वो भक्ति, हम कभी कहते हैं दुनिया में सूर्य तो उगता है ईस्ट से, लेकिन ये कृष्ण कॉन्शियसनेस का सूर्य वेस्ट से उगा है, ये तो वेस्ट से उगा है। ये भक्ति फिर प्रभुपाद के साथ अमेरिका चली गई, वेस्ट में चली गई, और वहां से वो भक्ति वापस फिर भारत में आई। और ये हमने आंखों से देखा कि वो जब प्रभुपाद के पाश्चात्य देश के भक्त भारत में कीर्तन करने लगे तो भारतवासी भक्त बनने लगे। पहले प्रभुपाद के अपने प्रयास से, प्रभुपाद खुद लिखते हैं कि एक भी भक्त नहीं बन रहा है, मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन उनको देख के कितने भक्त बन गए कि इस वक्त दुनिया के अंदर कहीं कृष्ण कॉन्शियसनेस का सबसे ज्यादा प्रबल प्रचार हो रहा है तो भारत में हो रहा है और कहीं भी नहीं हो रहा है। इस वक्त में भारत के बाहर जितने भी सवाय रशिया को छोड़ के, कुछ कंट्रीज को छोड़ के, जहां भी कृष्ण कांस्य प्रचार है वहां सब भारतवासी काम चला रहे हैं। तो ये भक्ति प्रभुपाद के हृदय में और नित्यानंद प्रभु की शक्ति दूसरे दिन बलराम जी के और प्रभुपाद जी निकले हैं। तो बलराम जी के आविर्भाव के बाद के एक श्लोक को हम आज पढ़ते हैं, फिर देवताओं की प्रार्थना जो कृष्ण को गर्भ में स्थित है वो हम 3-4 दिन पढ़ेंगे। तो ये हमने बलराम पूर्णिमा के दिन कथा की थी कि भगवान ने योग माया को बुलाया, और ये जो योग माया है ये भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, जो स्पिरिचुअल पोटेंसीज है। दिस योग माया हु इज द फिफ्थ ऑफ हिज स्पिरिचुअल एनर्जीज, श्री कृष्ण की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो 9 है, उनमें से नंबर 5 जो है उसका नाम योग माया है और नंबर 1 का नाम है विमला। और हमने कहा था विमला प्रसाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती का नाम है, इसका मतलब राधा रानी की कृपा। विमला उत्कृष्णी ज्ञान क्रिया योग माया प्रहिवी सत्या ईशाना और अनुग्रह। और आप एक देखेंगे दामोदर लीला में कि भगवान की अनुग्रह शक्ति प्रकट हुई, भगवान की अनुग्रह शक्ति, वहां लिखा है कि यशोदा के बालों से पसीने को बहता देख के, फूल को झड़ा हुआ देखा तो भगवान के हृदय में अनुग्रह की शक्ति प्रकट हुई। तो अनुग्रह की शक्ति से भगवान अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। भगवान की जो अनुग्रह शक्ति है वो भक्तों के ऊपर जब होती है तो भक्त भगवान को अपने वश में कर लेते हैं। तो ये भगवान की योग माया शक्ति, उसको बलराम जी का स्थानांतर करने के बाद भगवान ने कहा, अतः हम अंश भागे न देवक्या पुत्रम शुभे। उसके बाद अब जब बलराम का स्थानांतर कर देंगे, उसके बाद योग माया मैं अपने अंशों के साथ, आई शैल देन अपियर विथ माई फुल सिक्स अपीलेंसेस, भग का मतलब छह अपने अंशों के साथ देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। और तुम, यह शब्द जो लिखा है ना बड़ा अच्छा है, शुभे देवी तुमको मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम जो भी करोगी वो शुभ होगा। प्राप्स्यामी तुम यशोदायाम नंद पत्नियाम भविष्यसि। ये नहीं कहा कि तुम उसकी बेटी बनना। विष्णु चक्रवर्ती पास लिखते हैं कि योग माया यशोदा की बेटी नहीं, तुम वहां प्रकट होना मेरी अनुजा के रूप में, कि तुम उसकी पुत्री बनना। ऐसा पुत्री शब्द नहीं लिखा है, लड़की नहीं लिखा है, ट्रांसलेशन में उन्होंने लिखा है आप उस हो जाइए और आई विल एंड अपियर इन द डायरेक्शन ऑफ मदर यशोदा द क्वीन ऑफ महाराज। भगवान भागे न, अंश भागे न मीन्स दैट नॉलेज स्टैंड एंड अदर सेकेंडरी क्वालिटीज अंश। तो भगवान अपने अंशों के साथ, षड गुण के साथ, ज्ञान वैराग्य ईश्वर उनके साथ। भग का दूसरा मतलब है भजन। तो मैं उनके साथ प्रकट हूंगा। श्रीधर स्वामी इसको ऐसे लिखते हैं, भावार्थ दीपिका में सनातन गोस्वामी लिखते हैं, ही इज परफेक्ट इन हुम ऑल दी पार्ट्स अंश एंटर भजन प्रवेशे विच मीन्स एंट्रेंस। इसका मतलब अंश भागे न, ये शब्द इसके ऊपर काफी आचार्यों ने चर्चा लिखी है। तो श्रीधर स्वामी ने कहा है कि अपने सिक्स ऑपुलेंस के साथ, तो अंश का मतलब ऑपुलेंस वहां है। सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि जिसके अंदर सारे अंश प्रवेश हों, अथवा अन्य सारे जो भगवान के पहले अवतार है वो उसके अंदर प्रवेश हो गए। एक और अर्थ सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि जो भगवान स्वयं है उसके अंदर जो प्रवेश होगा वो अंश भागे ना, वो अंश है जो स्वयं भगवान में प्रवेश होगा। तो स्वयं भगवान यशोदा के वहां प्रकट होंगे और वसुदेव नंदन कृष्ण उसमें प्रवेश होंगे। Another meaning of the word is that अंश refers to the Brahma and all other servants. अंश का यहां अर्थ है ब्रह्मा एंड अदर सर्वेंट्स, एंड भाग रेफर्स टू भाग, किसी का भाग खुल गया मतलब ऑस्पिशियसनेस। तो इसका अर्थ यह है द लॉर्ड अपियर्स फॉर द ऑस्पिशियसनेस ऑफ ब्रह्मा एंड अदर्स। तो अंश भागे न का दूसरा अर्थ सनातन गोस्वामी ने लिखा है कि जो भगवान के सेवक ब्रह्मा आदि हैं, जो भगवान के अंश हैं, जैसे हमें ममई वंश हो जीव लोके, तो ऐसे जो भगवान के अंश ब्रह्मा आदि प्रार्थना करके करने गए थे उनके भाग्य के लिए, उनके सौभाग्य के लिए भगवान अपियर होंगे अपने अंश के साथ, अथवा अंश रूप में अर्पण हो, यहां अंश रूप में प्रकट हो रहे हैं और यशोदा के वहां पूर्ण रूप से प्रकट होंगे। तो ऐसे बहुत इसका गहरा भाष्य है। Another meaning is as follows. Bhaga means ansa. I will appear in the mood of son of Devaki as the plenary portion. मैं देवकी के यहां वसुदेव कृष्ण expansion के रूप में प्रकट होऊंगा, partially manifesting myself but not completely. Devaki will love me only with Aishwarya bhava.
a loving mood of respect and majesty. Yashoda, however, will manifest pure paternal love, shuddha vatsalya prem for me, due to the restriction of Aishwarya. तो पूर्ण रूप से तो मैं यशोदा के वहां प्रकट हूंगा, क्योंकि वो मुझे माधुर्य भाव से, वात्सल्य भाव से, लेकिन देवकी के यहां मैं अंश रूप में प्रकट हूंगा एज माय प्लेनरी एक्सपेंशन. तो इसलिए रूप गोस्वामी ने उद्धव संदेश में लिखा है कि मथुरा से जब उद्धव को भगवान ने भेजे तो वो वसुदेव कृष्ण है. वैसे तो नंदनंदन कृष्ण तो ब्रज से कभी बाहर जाते नहीं है, लेकिन वसुदेव कृष्ण जो नंद कृष्ण के अंदर प्रवेश थे अंश रूप में और उन्होंने छारे असुरों का वध किया वहां, वो अब कृष्ण से दूर हो गए थे तो उनको कृष्ण की दूरी के कारण वृंदावन में बहुत आसक्ति थी. तो इसलिए बाहरी दृष्टि से उद्धव को सबको संदेश देने के लिए भेजा, लेकिन ये वसुदेव कृष्ण, नंदनंदन कृष्ण ब्रज से बाहर कभी नहीं जाते हैं. ये बहुत बड़ा असर उद्धव संदेश के ऊपर रूप गोस्वामी की टीका है, लेकिन ये रहस्य की बातें सामान्य ग्रंथों में नहीं लिखी है, कुछ आचार्यों ने इसके ऊपर टीका लिखी है. भविष्यसी बट योर योग माया विल सिंपली अपियर फ्रॉम यशोदा. इट इज नॉट मेंशन दैट शी विल बिकम द डॉटर ऑफ यशोदा. यशोदा घर में रहेगी नहीं, बेटी के रूप में यशोदा को कोई सुख नहीं देगी. Though it is mentioned that Krishna will become the son, मैं पुत्र के रूप में वहां पुत्र, पुत्रताम, देवकी का मैं पुत्र हूंगा. यशोदा will not have affection for you as daughter. योग माया तुमको देखेगी नहीं यशोदा, तो तुम्हारे से कौन सी अफेक्शन होगी. तुम बस वहां प्रकट होना, पुत्री के रूप में नहीं, वहां सिर्फ प्रकट होना. और फिर भगवान देवी को वरदान देते हैं. अर्चस्यन्ति मनुष्यास्त्वाम, मानव तुम्हारी पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे. अर्चस्यन्ति मनुष्यास्त्वाम सर्वकाम वरेश्वरीम, आप सारों की इच्छा पूरी करेंगे. काम वरेश्वरीम, काम इच्छा पूरी करेंगे. धूप उपहार बलि भी सर्वकाम वर प्रदान, लोग आपका धूप करेंगे, आपको बलि अर्पण करेंगे और आप सबकी इच्छाएं पूरी करेंगे, करोगी. बाय सेक्रीफाइस फॉर एनिमल ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स विल वर्शिप यू गॉर्जियसली विथ वेरियस पैराफर्नालिया बिकॉज यू आर सुप्रीम इन फुलफिलिंग द मटेरियल डिजायर्स ऑफ एवरीवन. विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर राइट्स, यूअर अंश मटीरियल माया विल बी टेकन बाय वसुदेव. यूअर अंश इसका मतलब योग माया का अंश. Your ansa, material maya will be taken by Vasudev to cheat Kansa. Yog maya phir bhi Vrindavan mein rahegi. Vrajvasiyon ko Bhagwan ki leela mein sahyog karegi. Yog maya apna prabhav dalti rahegi. Lekin yog maya ka jo ansa hai, chhaya hai, usko Vasudev le jayega. और वो कंस को चीज करेगी. यू विल बी वर्शिप इन वेरियस फॉर्म्स इन विंध्याचल एंड अदर प्लेसेस. ऑल मैन विल वर्शिप दीज फॉर्म्स बिकॉज यू आर द सुप्रीम वरम गॉडेस ईश्वरीम ऑफ दोज हु हैव ऑल टाइप ऑफ मटेरियल डिजायर्स. और फिर कहां कहां आप रहोगी, ये भगवान ने वरदान दिया है. नामे ध्यानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विद्या वैष्णवीति च कुमुद्दा चंडिका कृष्णा माधवी कन्या केति च माया नारायणी शानि शारदयति अम्बिकेति च. अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, श्री लॉर्ड श्री कृष्ण ब्लेस माया देवी बाय सेइंग इन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पीपल विल गिव यू डिफरेंट नेम्स सच एज दुर्गा भद्रकाली विद्या वैष्णवी कमुदा चांडिका कृष्णा माधवी कान्यका कन्यका माया नारायणी ईशानी शारदा एंड अंबिका.
In future, people will call you by various names. Or Prabhupada ji ne Bhavart mein likha hai ki Vallabhacharya ne Bharat mein jahan jahan Devi ki puja jis naam se hui hai us sthan ka varnan kiya hai ki Durga kahan kehte hain, Kamya Devi wo South India mein kehte hain, Ambika kahan kehte hain, to har ek jagah mein Bharat mein kahan kahan Devi ka kis naam se puja ho rahi hai. Aur phir ye likha hai ki क्योंकि भगवान के साथ देवी भी प्रकट हुई, इसलिए जो लोग भौतिक कामना की इच्छा वाले हैं वो शाक्ता हो गए, शक्ति के पुजारी हो गए, और जो शुद्ध भाव वाले थे वो भगवान विष्णु के पुजारी वैष्णव हुए. तो यहाँ से फिर हम कल आगे पढ़ेंगे कि देवी को कहने के बाद भगवान कैसे प्रकट हुए वसुदेव के मन में और देवकी के मन में, और फिर देवता आके कैसे प्रार्थना करते. तो कल से अब ये देवताओं की प्रार्थनाओं का प्रसंग पढ़ेंगे दो दिन. हरे कृष्ण बोलो हनुमान. वैसे एक आर्टिकल लिखा था माधवानंद ने कि हाउ कैन वी वर्शिप जगन्नाथ इफ देयर इज नो राधा देयर. राधा नहीं होगी तो हम कैसे जगन्नाथ का वर्शिप करेंगे. तो उसने उस पूरे आर्टिकल में दिखाया है कि राधा को जगन्नाथ की छाती के ऊपर स्थापित करते हैं, और मेरे ख्याल में जहां तक लिखता है विमला के रूप में वो भगवान की शक्ति के रूप में वहां रहती है. तो